दया परिवार के द्वारा आयोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रातःकाल द्वितीय अध्याय के 30वां श्लोक तक हो गया था। परमार्थ तत्व का विचार करके आत्मा का नाश नहीं होता है, इसलिए आत्मनाश निमित्त शोक मोह नहीं करके अपने धर्म अनुष्ठान करे अर्जुन, इसलिए भगवान ने इसे उपदेश किया। केवल परमात्मा तत्व तो अपेक्षा के लिए नहीं, अपना धर्म पालन करने के लिए भी युद्ध करना चाहिए। सधर्मम अपिचावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धाश्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। सद्धर्मम अपि च अवेक्ष्य, विचार करके देख करके अपने धर्म स्वकीय धर्म, क्षत्रिय का सधर्मे युद्धम सधर्म निपते प्रजानां परिपालनम, ये राजा का धर्म है युद्ध और प्रजा का पालन देश की रक्षा, इसको ही देख करके विचार करके न विकम्पित मरसी, विचलित तो नहीं होना चाहिए, जो अपने धर्म से हट जाना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्माधि धर्म्याद ही का यस्मात, क्योंकि धर्म्य धर्म से युक्त को धर्म्य कहते, धर्मादान पेते धर्मयुक्त युद्ध से श्रेय क्षत्रिय से अन्यत न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से अन्य कोई कल्याणकारी है ही नहीं, सबसे कल्याणकारी का साधन अपना धर्म, और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध, धर्मयुक्त युद्ध अधर्म पूर्वक नहीं, नियम के अनुसार धर्म के अनुसार जो युद्ध है उससे बढ़कर के अन्य तो कोई भी क्षत्रिय के लिए श्रेय है, प्रशस्तर कल्याणकारक कोई है ही नहीं, इसे श्रेष्ठ है तुम्हारा धर्म पालन करने के लिए भी करना है। आत्मतत्व नित्य है ये तो बता दिया, उसका बोध नहीं होता है, इसलिए सर्वे प्राण सब प्राणियों के लिए तुम मर जाएंगे मैं मारूंगा ऐसा सोच करके दुख नहीं करना चाहिए, बता दिया। और जन्म मरण वाला मानो तो भी जन्म मरण अवश्य मावी, तो भी तुम्हारा धर्म पालन करना चाहिए, और अपने धर्म विचार करने पर देखना है तुम्हें क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का अपना धर्म है युद्ध प्रजा पालन देश की रक्षा, धर्म है तो युद्ध से बढ़कर के कोई कल्याणकारक है ही नहीं, इसलिए तुमको अपना कर्तव्य धर्म पालन करना चाहिए। श्लोक बोलो, स्वधर्म अपिचावेक्ष धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोन्यत् क्षत्रियस्। फिर बोलो स्वधर्म, स्वधर्ममपि चावेक्ष तृतीय पद में कितने पद बताओ, कितने पद बोलो, कितने पांच पद, धर्म्याद आगे ही आगे युद्धाद के आगे चेय आगे अन्यत आगे क्षत्रिय है तृतीय पद में, तृतीय पद कहां तक अन्य कितने पद हुआ पांच, चेय शब्द का अर्थ प्रशस्तर कल्याणकारक, अधिक कोई प्रशस्तर दूसरा है ही नहीं, किसे युद्ध से, कैसे युद्ध धर्म्य धर्म से युक्त कोई बढ़कर गए ही नहीं, अयुद्ध करना चाहिए तुम्हारा कर्तव्य है। आगे कहते यदृच्छया चोपपन्न स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखेन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया च उपपन्नम्, यदृच्छा बिना इच्छा से प्राप्त हो जाए, यदृच्छया च उपपन्न प्राप्त, स्वर्ग द्वारम अपावृतम्, स्वर्ग द्वार खोला है उसके लिए, जिसको इसे युद्ध प्राप्त हो जाता है उसके लिए स्वर्ग द्वार खोला है, अतः जो स्वर्ग जाएगा मरने पर, मर जाए तो। सुखी न क्षत्रिय पार्थ युद्धम युद्धम लभन्ते, जो सुखी है, सुख पुण्य भाग्यशाली वही सुखी होते हैं। किसको सुख अधिक मिलता है, कारण है उसका पुण्य कर्म, दुख मिलता है तो अपना पाप कर्म। यदि कोई सुखी है उसके प्रति द्वेष करने की आवश्यकता नहीं, उसका पुण्य कर्म का फल भोगता है, भले अभी कुछ भी करे, यदि सुख प्राप्त करता है, धन संपत्ति सम्मान मिलता है, पुण्य कर्म का फल है। और अपने को यदि सुख मिलता है तो पुण्य कर्म का फल है, दुख मिलता है तो पाप कर्म का फल है। जो किंतु कुछ ऐसे होता है मालूम नहीं क्या हमारा पुण्य क्या पाप हो, कभी कभी ऐसे मिल जाता है, वहां विचार करते हमको क्यों मिल गया, दूसरे को क्यों नहीं मिला। जो नहीं मानता अंत में कहता है मेरे भाग्य में था, मुझे प्राप्त हो गया, कभी सोचा नहीं था, ऐसे कभी प्राप्त हो जाता है। तो ये जो सद संयोग, यह संयोग भी अपने पुण्य कर्म से कभी किसको मिल जाता है, जो चाहता है उसे अधिक मिल गया, कभी नहीं चाहता सोचा नहीं मिल गया। जो पुण्य कर्म किए हुए जिन्होंने सुखी है, ऐसे युद्ध प्राप्त करते हैं, उनको ऐसे युद्ध सरल से मिलता नहीं है, जैसे मनुष्य जन्म सरल से प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर उसके बाद दुर्लभ सद्गुरु है, इसी प्रकार साधन करना भी बड़े कठिन है। कोई कोई आश्चर्यवत आदि श्लोक आया था, कोई कोई ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये जो पुण्य कर्म के बिना ऐसे स्वर्गदार खोला है, धर्म तो युद्ध सबको प्राप्त नहीं होता है, क्यों जिससे जिस कर्म करने से स्वर्ग जाएगा, ये कर्म अपने आप उसको प्राप्त हो गया। यागादि करने पर स्वर्ग जाते हैं, यागादि करना यहां तो कुछ नहीं, युद्ध करके उसे मर जाएगा तो स्वर्ग प्राप्त करेगा, जीत लेगा तो राज्य प्राप्त करेगा। तो ये तो सुख पुण्य धर्म भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। तुमको प्राप्त हुआ तो तुम भाग्यवान हो, इसलिए धर्म युक्त युद्ध करना चाहिए। यदृशा मतलब या इच्छा है, बिना इच्छा, कुछ इच्छा नहीं, इसे अपने आप मिल गया। यदृशा इच्छा के बिना नहीं सोते हुए प्राप्त कर दिया, नहीं चाहते मिल गया यदृशा। श्लोक बोलो। किसी प्रकार सुयोग प्राप्त हो गया, प्राप्त होने के बाद करना चाहिए, नहीं करेगा तो क्या होगा। अथ चेत त्वमिम धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तत स्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत, ऐसा होने पर भी तुम्हारा धर्म युद्ध करना चाहिए, तुमको इसे भाग्य से मिल गया, फिर भी तुम इमं धर्म्यम संग्राम न करिष्यसि, तुम इसे धर्मयुत संग्राम युद्ध नहीं करोगे, यदि ऐसे भाग्य से प्राप्त होने के बाद भी नहीं कर पाओगे तो क्या होगा। तत स्वधर्मम कीर्तिंच हित्वा, अपने धर्म को छोड़ करके और धर्म पालन करने से कीर्ति उसको भी छोड़ करके क्या प्राप्त करोगे, पापम अवाप्स्यसि, पाप ही प्राप्त करोगे, पाप के भागी बनोगे, पापों को ही प्राप्त करोगे, पाप ही होगो, पापी बनोगे। अपने आप प्राप्त होने पर भी नहीं करे, कोई तो प्रयास करके कुछ प्राप्त करता है, अब बिना प्रयास प्राप्त हो गया स्वर्ग द्वार खोला हुआ तो भी नहीं करोगे तो अपने धर्म कीर्ति छोड़ करके पाप को ही प्राप्त करोगे। अर्थात जो प्राप्त होता है संयोग से कुछ प्राप्त हो गया तो उसको अवश्य ही सदुपयोग करके फल प्राप्त करे। मनुष्य जन्म किस प्रकार मिल गया पता नहीं, कितने जन्म कहाँ कहाँ भट गया, अभी मनुष्य जन्म मिल गया तो उसका सार्थक करना चाहिए अपना कर्तव्य। यदि सार्थक नहीं कर पाए तो बार बार फिर नहीं मिलता है। विचार करते सुनते किंतु ऐसा ये लगता है कितने दुर्लभ है मालूम नहीं होता। कितने सब प्राणी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे स्वर्ग में देवता लोग भी तरसते सोते हैं, हम तो दुर्भाग्य हम तो सुख भोगते हैं किंतु ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ये मनुष्य लोग तो हमसे बढ़ करके हमारे अधीन में है किंतु ये ज्ञान प्राप्त कर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए अधिकार है किंतु भोग आसक्त भोग करने के लिए गए। जो भोग करने के लिए स्वर्ग में गए उस भोग में आसक्त इतने रहते हैं समझने पर भी वैराग्य नहीं होता है। यहां भी इस प्रकार जो कुछ लोग भोग आसक्त है समझते हैं समझने पर भी वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कितने विद्वान लोग पढ़ते पढ़ाते हैं विश्वविद्यालय आदि में बहुत पढ़ने वाले योग्य विद्वान है बड़े ग्रंथ भी पुस्तक लिखते हैं समझते हैं किंतु वैराग्य नहीं होता है। किस किस को तो विश्वास नहीं होता है। अद्वैत पढ़ा देते और कहते बोले अरे ये तो साधुओं का है हमको पढ़ाना है ये कोई संभव है, उनको विश्वास नहीं होता है वैराग्य नहीं होता। वैराग्य नहीं होने से शास्त्र पंक्ति कंठस्थ कर देंगे, पुस्तक लिखना ग्रंथ लिखना पढ़ाना बड़े बड़े सब करते हैं किंतु वैराग्य नहीं होता है। इसलिए वो वैराग्य के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। देवताओं को समझते हैं समझने के बाद ही वैराग्य नहीं होता तो मनुष्य को देखते ये तो बड़ा विरक्त कोई विरक्त हो गया। वैराग्य कोई विरक्त है वैराग्य युक्त है सब लोग कहते कितने देखो वैराग्य विरक्त है प्रशंसा करते हम नहीं कर पाते हमारे वैराग्य नहीं होता है दुखी होते हैं। क्यों मना करता है किंतु नहीं हो पाता है क्योंकि भोग के लिए आगे पहले कर्म किया। इस जन्म में जो भोग अधिक मिलता है भोग करने के लिए मिला किंतु यदि सोच ले कि ये हम भोग करके समय बर्बाद नहीं करेंगे उसी धन का अन्य उपयोग करेंगे हमारे समय का भोग के सब बर्बाद नहीं करेंगे हम साधन करेंगे तो वही आगे प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के पास ये सामर्थ्य है विवेक करके ऐसा सन्मार्ग में चल सकता है। नहीं करेगा तो अपने धर्म को छोड़ेगा कीर्ति छोड़ेगा पाप को प्राप्त करेगा पाप लेकर के जाएगा। श्लोक बोलो अपने धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप प्राप्त करोगे केवल इतने नहीं और भी देखो अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। भूतानि अव्ययम् अकीर्तिं चापि ते कथयिष्यन्ति सारे प्राणी जीवों को तुम्हारी अकीर्ति कहेंगे। अव्ययम् जिसका नाश नहीं होने वाले कब कोई था अभी भी जो रावण था उसका नाम सुनते ही कोई कुछ कुछ था असुर था उसका नाम सुनते ही दुशासन था नाम सुनते ही लोग कैसे अकृति कथन निंदा करते हैं। कई कई कभी क्या कहता कई कई सुनते सब लोग कहते कैसे क्या कर दिया राम जी सीता जी को वनवास में भेज दिया राम जी को अकृति चापी कथई शांति अव्ययाम ये अकृति आगे चलती रहेगी ये अकृति समाप्त तो नहीं होती है। और अकृति हो तो क्या आपत्ति है संभावित से अकृति मरणादत्रिचते जो संभावित सबके द्वारा उत्कृष्ट है धनुर्धारी अर्जुन शिवजी के साथ शिवजी के भक्त है
और भगवान श्री कृष्ण उसके सखा है, इतने संभावित होकर के भी उसकी अकृति जो सामान्य व्यक्ति तो उसकी अकृति तो कोई बात नहीं, इतने श्रेष्ठ होकर के अकृति मरण से भी बढ़ करके, कोई मर गया तो कोई बात नहीं, कम से कम अकृति तो नहीं हुई, किंतु मर गया तो आगे कोई उसकी निंदा करता है? कोई यदि कम उम्र में मर गया कोई इसकी निंदा करता है? बल्कि उसको सोचते बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, मर गया रहता तो कुछ अच्छा कर्म करता, ऐसे होते हैं। और यदि जीवित रह करके निंदित कर्म करता है, अकृति होती है तो निंदा करते हैं। इसलिए मरण की अपेक्षा अकृति तो अतिरिक्त है और बहुत कष्टदायक है, संभावित जाकृति मरणाद मरण से बढ़ करके। सब लोग कहते बड़े धर्मात्मा है, बड़े वीर है, धनुर्धारी है, ये दीर्घ काल तक ऐसे कहते रहेंगे, चलता रहेगा कि देखो ऐसा होकर के युद्ध से भाग गया, कितने डरपोक हो गए, इतने वीर होकर के धर्मात्मा होकर के क्षत्रिय होकर के युद्ध से भाग आया, अपने धर्म इतने भी नहीं जानता है क्या क्या है, ये तो मरण से बढ़कर हो जाएगा, अर्थात उसके अपेक्षा अकृति की अपेक्षा तो मर जाना चाहे। श्लोक बोलो। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महारथाः त्वाम भया द्रोणादुपरतम मन्स्यन्ते, महारथे वाल्लिक भगदत्त सोमदत्त प्रभृति द्रुपदादि, ये क्या मानेंगे? ये भय से भाग गया, तुम दुखी होकर के मैं मारूंगा, ये लोग मरेंगे, पाप होगा, ये सब सोचते हो, किंतु अन्य लोग क्या समझेंगे? ये तो डर पके है, डर कर भाग गया, क्षत्रिय होकर के युद्ध में डर कर भाग जाता है, मतलब उससे बढ़कर के और कोई अधिक निंदा नहीं होगी। धर्म का त्याग, भय और धर्म का त्याग, खाली भय करके चला गया, जीवन के लिए चला गया, ये तो निंदा बहुत है, और अपने धर्म को भी छोड़ दिया। जो धर्म को छोड़ देता है किसी परिस्थिति में, सबसे तो निंदनीय हुई है, और वही है कर्तव्य जो करता है, धर्म का त्याग नहीं करे। मरने का उपस्थित मरना तो अवश्य भावी है, कुछ भी हो जाए अपना धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म का जो त्याग कर देता है तो उसे छोड़ देता है, सबसे बड़े निकृष्ट है। सब क्या मानेंगे? भयाद रणाद उपरतम, रण से युद्ध से भय से उपरत हो गया, निवृत्त हो गया, ऐसा मानेंगे, मनसंति मानेंगे, तुमको मानेंगे। कौन मानेंगे? महारथा वाल्लिक भगदत्त समुदयति द्रुपद आदि बड़े बड़े शोक है, ये तो डर कर भाग गया। ये शांचत्वम बहुमतो भूत्वा लाघवम यास्यसि, जिन जिनको बहुत मानते हैं, दुर्योधन आदि बड़े मानते हैं, बहुत गुण से युक्त मानते, बड़ा धनुर्धारी भय करते तुमको अंदर से अर्जुन के नाम सुनने पर, वो लोग के सामने तुम क्या हो जाओगे? बहुमतो भूत्वा लाघवम यास्यसि, लघु को हल्कापन, लघुता को प्राप्त करोगे, लघुता मतलब हल्कापन, कहे क्या है अर्जुन, कुछ नहीं, यदि कहीं युद्ध में चल जाता कोई आगे भविष्य में, अभी कोई उसका नाम नहीं लेता, क्या अर्जुन क्या धनुर्धारी भाग गया युद्ध से, ये क्या है? वो कोई ये नहीं मानेगा कि युद्ध में मारने पर ये लोग मरेंगे, इनको नहीं मानना चाहिए, पूजनीय है, ये जो भावना तुम करते हो ये कोई सोचेगा नहीं, वो तो सब डर कर भाग गया, युद्ध को छोड़ दिया, और सबको सबके मन में तुम्हारे प्रति जो प्रशस्त उत्तम श्रेष्ठ पूज्य बुद्धि है वो तो समाप्त हो जाएगा, सब कहेंगे बिल्कुल हल्कापन, कुछ नहीं, क्या उसके धनुधारी है, गांडीव धनु, क्या धनु का मतलब है। ओम श्लोक बोलो। फिर बोलो थोड़ा जोर से बोलो सब लोगों, भैया
और क्या होगा?
अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्।
अवाच्य वादान बहुन अवाच्य वादान तब अहिता वदिष्यन्ति, तुम्हारा अहिता तुम्हारे विरोधी जो है तुम्हारे नाम पर क्या बहुत ऐसे शब्द कहेंगे जो कहने लोग योग्य नहीं है। अर्जुन के लिए वाद शब्द है जो अवाच्य कहने योग्य नहीं, धिक्कार कर कहेगा, देख अर्जुन को है नाम लेकर के तो धिक्कार है, क्या उसके गांडी वन क्या धर्म है क्या धर्म दांडी है, देख पूर्वक कहेंगे ये धिक्कार पूर्वक है। इतने बड़े धनुर्धानी जो भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी उसको धिक्कार कर कहेंगे कितने दुख है। तब अहिता वदिष्यन्ति क्यों ऐसे कहेंगे? तब सामर्थ्य और निंदनत तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते करते हुए ततो केम न दुखतरम उससे बढ़कर के क्या अधिक दुख है। ततः किससे? कर्ण के लिए कठोर मर्म घाती शब्द तुमको दोष देंगे जो मर्म को घाते, इसे शब्द सुनने पर कितने कष्ट होगा, इससे बढ़कर के क्या दुख मिलेगा, मर जाना कोई दुख बड़ा नहीं है, आई जीवित रहो ऐसे सुनते रहो, सब लोग धिक्कार करेंगे और मरने के बाद भी लोग धिक्कार करते रहेंगे दीर्घ काल तक, उससे बढ़कर क्या दुख है। श्लोक बोलो प्रथम पद में कितने पद है बताओ? प्रथम पाद में छे, अच्छे कितने में किस में है? अवाच्य वादान च बहु, और द्वितीय पाद में हाँ पूर्वाध में छह पद हो जाएगा, आधे में छह पद, उत्तराध में कितने पद है? कितने? सात है, ठीक है। पूर्वाधि में अधिक है, उत्तराधि में अधिक पद है, पूर्वाधि को भूल दे। अच्छा युद्ध करने से क्या होगा? हतो वा प्राप्तसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यदि मर जाओगे हतोवा स्वर्गम प्राप्स्यसी, क्षत्रिय युद्ध में युद्ध करके मर जाएगा तो क्या होगा? स्वर्ग जाओगे। और जीतवा वा यदि कर्णादि को जीत लोगे महिम भोक्ष से मही पृथ्वी पालन करोगे, भोग भोग करोगे, राजा बन करोगे, दोनों तरफ लाभ है, हार गया तो स्वर्ग और जीत गया तो राज्य प्राण, दोनों तरफ लाभ है। तस्माद हे कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए निश्चय करके कृत निश्चय, कृत निश्चय ये ना निश्चय करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ, दोनों तरफ लाभ है, और नहीं करोगे तो हानि बता दिया, और करने पर जीत जाओ तो भी अच्छा, हार जाओ तो भी, मर जाओ तो भी अच्छा है, तो जो दोनों तरफ अच्छा है युद्ध करने पर उसको छोड़कर नहीं करना, कितने मूर्खता वीरता है। श्लोक बोलो क्या निश्चय करेगा? ये निश्चय करेगा या तो उनको मैं जीत लूंगा सबको मारूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा, बस क्या हो जाता है, या तो मारूंगा सो जीत जीत दूंगा सबको, शत्रु को मारूंगा, नहीं तो मरना है कोई बात नहीं, वापस नहीं आना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्जुन के मन में था मैं मारूंगा इतने लोगों को मरेंगे, कुल क्षयकृत होगा, पाप होगा, नरक में जाना पड़ेगा, पाप में आश्रय अत्वान आतसाई न, इनको मारेंगे तो हम पापी बनेंगे, कितने कितने भावना। अभी राज्य मिल जाएगा तो ठीक है, राज्य तो मिलेगा किंतु कितने पाप प्राप्त होगा, पापी बनेंगे, नरक जाना पड़ेगा। इसे भगवान कहते युद्ध अपना स्वधर्म है, युद्ध करते समय ये उपदेश सुनो किस प्रकार युद्ध करना है, अपने कर्तव्य पालन करते समय ये भी पालन करना, इसको भी ध्यान रखना। सुख दुख के समय कृत्वा, सुख दुख को समान करके, सुख दुख समान कैसे हो जाएगा, सुखों से हंसते खुश होते हैं तो दुखों ने परिचय होता है, दुखों ने पर तो रोना आ जाता है, कष्ट होता है हा करते, समान करने का आता राग द्वेष नहीं करेगी। सुख सुख साधन में राग, दुख दुख साधन में द्वेष होता है, जो दुख देता है उसके प्रति द्वेष होता है, उसके प्रति शत्रु भाव, किसने दुख दिया उसने हमको कष्ट दिया, जीवन भर भूलेंगे नहीं। भगवान का नाम याद करना कठिन है किंतु सुबह उठते ही काल उसने इसे मुझे कहा था तुरंत पहले ये भी याद होता है, किसने कुछ कह दिया दुख मिला तो भूल जाते जल्दी, आखिर बैठ कर भगवान का नाम लेते यू याद होता हमको इसे बोला हमको इसे कहा, कल उसको बताऊंगा, सुबह उठते ही होता हमको इसने कहा था। ये जो होता है सुख सुख साधन में राग आसक्ति, कोई सुख दिया सुख के साधन प्राप्त तो बड़ा खुशी, और दुख दुख के साधन होने पर द्वेष, और दुख देने वाले के प्रति कितने शत्रुभाव हो जाता है, थोड़ी थोड़ी चीज के लिए सारा जीवन भर शत्रुभाव, कोई कोई तो इसके साथ बात ही नहीं करना, कितने दिन बाद लाएगा थोड़ी थोड़ी सामान्य चीज के लिए, यही समान करना है सुख दुख, सुख दुख तो भाव करना है, समान करने का अभिप्राय राग द्वेष नहीं करना, दुख देते समय दुख देने वाले के ऊपर दोष नहीं देना। दुख क्यों मिलता है कारण क्या है मालूम है, मूल कारण अपने किया हुआ पाप कर्म, निमित्त तो कुछ बन जाएगा, किया हुआ पाप कर्म दुख देने के लिए आता है, जो कर्म फल दुख है, जो कर्म पाप कर्म है वही दुख देता है, वही से पाप कर्म का फल ही दुख है, और सुख पुण्य कर्म का फल। आपको दुख भोगना है आपका पाप कर्म होने पर आपके मित्र भी शत्रु जैसे हो जाएगा, शत्रु नहीं होने पर भी आपको लगेगा मेरा शत्रु हो गया, कभी कभी उसके मन में कोई कुछ नहीं है किंतु अपने को लगे हम कैसे बोला, उसके मन में भले आपके प्रति दुर्भावना नहीं किंतु आपके पाप के कारण उसका कथन उसका देखना मैंने हमको इसे टेढ़ा देखा हमको इसे बोल दिया तो अपने आप दुखी है। बाद में पता चलता है मैं तो मालूम नहीं इसे सोचा नहीं था किंतु दुखी है। दुख जब पाप कर्म फल देता है ऐसा निमित्त बन जाता है, निमित्त के बिना भी दुखी होता है, अपनी गलती से गिर पड़ता है किसको दोष देगा। ये दुख जब आता है पाप कर्म फल देता है दुख अवश्य भोगना पड़ता है, और जो निमित्त बना वो निमित्त तो अपने पाप कर्म के कारण कोई निमित्त बना, उसके कारण आपको दुख नहीं मिला, किसी व्यक्ति के कारण दुख नहीं मिला, आपको तो दुख भोगना था उसके लिए वो निमित्त बना, दोष आपका पाप कर्म या व्यक्ति का दोष है, अपने पाप कर्म मिला भोगना। इष्ट वियोग अजम दुखम यच्चा निष्ठ समन्वयात तद्धि दूतम हरेर ज्ञेयम दुखम विस्मरणम हरे। इष्ट के वियोग से दुख होता है, ये इष्ट है कोई ले गया तो हमको दुख होगा, इष्ट वियोग जम दुखम यच्चा अनिष्ट समन्वयात अनिष्ट है वो प्राप्त होता दुख है, और मच्छर काटेगा तो हमको कष्ट होता है दुख होगा, शत्रु आए तो दुख होता है। यच्चा अनिष्ट समन्वय दो प्रकार दुख होता है, जो आप चाहते हो वो होता है इष्ट, जो इच्छा का विषय उसको कहते इष्ट, जो इच्छा का विषय नहीं उसको क्या कहेंगे अनिष्ट। इष्ट के वियोग से इष्ट, हम ये हमारा इष्ट है कोई ले गया दुख होगा, मित्र हमारा इष्ट है चला गया तो दुख होता है, और यच्च अनिष्ट समन्वय अनिष्ट है शत्रु दुख साधन अनिष्ट है वो प्राप्त हो तो दुख होता है। दो प्रकार इष्ट वियोगजम दुखम यच्चानिष्ट समन्वय समन्वय प्राप्ति तद्धि दूतम हरे ज्ञेयम। ये जो दुख होता है ये हरि भगवान का दूत है, भगवान आपके पास दूत भेजते हैं सावधान कराने के। तद्धि दूतम हरे ज्ञेयम, भगवान आपके पास दूत भेजने पर आप उसका सत्कार करोगे या अनादर करोगे? भगवान किसको भेजा तो उसका सत्कार करेंगे, करना नहीं है? नहीं, कोई दूत आ रहा है आपके पास आने के लिए, किसके पूछा मैं अमुक के पास जाना चाहता हूँ रास्ता बता दो, कहा इधर जाओ मिल जाएगा, कोई बता देना इधर नहीं उधर जाओ, कोई उधर जाने के बाद इधर नहीं तो इधर चलो, दिन भर भटक रहा है। कोई व्यक्ति कहा अच्छा उनके पास जाना है चलो मैं आपको पहुंचा देता हूँ, वो साथ में आकर के आपके घर में पहुंचा दिया। अब बताओ जो भगवान के दूत आपके पास आता था, दो तीन चार व्यक्ति कहा इधर चलो इधर चलो इधर चलो, और एक व्यक्ति लेकर के आकर पहुंचा दिया, जो लेकर के आकर पहुंचा दिया ईश्वर के दूतों को, वो आपका उपकारी है अपकारी है? उपकारी है, उसके प्रति क्रोध करना चाहिए? क्यों उपकार? क्योंकि ईश्वर के दूतों को पहुंचा दिया, वो उपकारी कौन मालूम है? ईश्वर दूत के जो निमित्त बना, उसको कोई कहेगा तुम क्यों इसको लेकर आए, तुमने क्यों लेकर आया, वो तो आपके पास आना था, वो नहीं लाता तो, और ढूंढ ढूंढ कर पूछ पूछ कर कभी तो आपके पास आना था, वो ले आया, ले आए तो आपका उपकार, उसका भी सत्कार करो। कौन? जो दुख जो लेकर आया, किसको लेकर आया? दूत, दूत को। दूत कौन है? दुख है, दुख ही दूत है, भगवान ने भेजा उसी दुख को आकर दे दिया और निमित्त बन गया। निमित्त बन गया तो उसकी कोई गलती है? हाँ, उसको दोष नहीं देना। दुख जो प्राप्त होता है तुरंत इसने कर दिया, उसने कर दिया, तुमने इसे क्यों बोला? दुख तो मिला फिर उसको भी और उसको गाड़ी को देकर उसको डांट फटकार करके और पाप कर्म किया। तद्धि दूतम हरे रियम, वो समझना ये दूत आया, जो लेकर के आता है वो निमित्त है, निमित्त के बिना वो नहीं, नहीं अच्छा वो लेकर के नहीं आता। ईश्वर के दूत आपके पास आता, ईश्वर दूत भेजेंगे तो आपके पास नहीं आएगा? वो तो आ जाएगा, वो नहीं लाएगा तो कोई लाएगा, तो उसकी क्या गलती है? दुख तो आपके पास आना था। तद्धि दूतम हरे गेम, अभी दुख को क्या बोलना है? दूत बोलना है। दुख जो आता है उसको क्या बोलना? ईश्वर का दूत। अभी दुख शब्द कहां प्रयोग करेंगे? कहते विष्णु विस्मरणम दुखम, दुखम विष्णु विस्मरणम, परमात्मा को भूल जाना ही दुख है। जब परमात्मा को भूल गए तो दुख शुरू हो गया। परमात्मा स्वरूप में जब स्थित है तो कोई दुख नहीं है, अपने स्वरूप में जब स्थित है तो आनंद ही आनंद है, स्वरूप से हटा तो दुख है। ये नहीं सोचा कैसे आपको पता चला? ये नहीं सोचा है कैसे मालूम हुआ? सब सोचा है, सब सोचने के बाद सब का कैसे कल्याण होगा वो शिक्षा देने के लिए किया, वो सब उनको मालूम पूरा जाना, सब सबने सोचा है छोड़ने के लिए करने के लिए, उसके क्या होगा जन कल्याण कैसे होगा देख करके, क्या सब समझ कर जान करके, ये नहीं कि इतनी चीज उनको मालूम नहीं था, पूरा मालूम। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख मिला तो समझ रहा है पुण्य कर्म का फल और जाएगा पुण्य कर्म समाप्त करके, दुख मिला तो समझ रहा हमने पाप किया हुआ कर्म फल और जाएगा तो दुख दे करके क्या करेगा पाप कर्म को नष्ट करके जाएगा। दुख आए तो क्या करेगा आपका उपकार करेगा या हानि करेगा? क्या उपकार करेगा? पाप नष्ट हो जाए। और सुख आए तो क्या करेगा? पुण्य कर्म ले लेगा। ये सोचना, दुख मिलते समझना अभी मेरा पाप कर्म जा रहा है, सुख मिलते समझ क्या सोचना पुण्य कर्म जा रहा है, बस वो दुख सुख दुख समय कृत्वा उसके कारण समान क्या था उसके कारण अपने मार्ग से विचलित नहीं होना ही समान है। राग द्वेष नहीं करके ऊपर से कुछ नहीं, गंभीर पानी में पत्थर फेंक दिया तो पानी जे चुके से हल्का पानी में इधर उधर होता है तो शांत, उसमें कुछ नहीं होता रहता है। सामान्य चलते समय थोड़ा कुछ लग गया अरे छोड़ो आगे चलते है ना, नहीं ऐसे चलते समय कुछ लग गया तो छोड़ो आगे चलो, इसी प्रकार समान करने का ही अभिप्राय है, राग द्वेष नहीं करना है। और लाभा लाभो जया जयो, लाभ और अलाभ हानि, जय और पराजय ये भी समान है। जय पराजय में तो स्वाभाविक है, दो लड़ते हैं तो एक की जय तो दूसरे की पराजय। कोई खेलते हैं ना आपस में, कितने खेलते हैं, कुछ खेलते हैं ताश खेलते हैं चेस खेलते हैं फुटबॉल खेलते दोनों जीत लेते, कभी एक जीत लिया तो दूसरे हार गया, बाकी वो जीत लिया तो दूसरे हार गया। सब में राजनीति में कोई हार गया कोई जीत गया, हार जीता लगता रहता चलेगा। तो लाभ और अलाभ किंतु अपने कर्तव्य करना है, हार गया तो उसकी गलती है नहीं, कोई एक कोई जीत जाएगा कोई हार जाएगा, अपने कर्तव्य करना है। और जयाजय जय पराजय हो लाभ अलाभ हानि लाभ बराबर, अर्थात धर्म पालन करते समय ये लाभ हानि जय पराजय इसका विचार नहीं करना, अपने कल्याण मार्ग पर धर्मयुक्त युद्ध अपने धर्म वर्णाश्रम धर्म शास्त्र विहित कर्म वही करना चाहिए। उसकी गिनती नहीं करना, सुख मिलेगा दुख मिलेगा हानि लाभ क्या होगा, अपने कर्तव्य पर चलना है, जो शास्त्र विहित कर्म वही करना है। अपने धर्म को यदि छोड़ दिया तो कार्य भ्रंश ही मूर्खता, तो निंदा स्तुति सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जो स्वाभाविक अवश्य भावी है उसको कोई टाल नहीं सकता है। हार गए जो महाभारत में कोई असमर्थ थे, विश्वविता मर गए असमर्थ थे, मर गए कितने समर्थ थे कितने, होने के बाद भी कोई कभी हार गए कोई जीत गए तो स्वाभाविक है होता ही। अच्छा नहीं युद्ध होता, महाभारत में युद्ध नहीं होता तो महाभारत में जितने मर गए वो अभी तो सो रहते ना, नहीं मरते ना, रहते मरते नहीं मरते, समय आने पर सो जाते, मरने का समय मरने आने के समय अपने आप मरते हैं, वह बैठ बैठे समाप्त हो जाते बिना कारण। युद्ध नहीं करने पर युद्ध क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो क्षत्रिय कोई मरता है, क्षत्रिय कोई भी समय पर डॉक्टर भी मर जाता है तो अपने स्थान में बैठ करके वैद्य नहीं मरता है, समय आने पर जाना है तो उसके लिए सोचना नहीं अपने कर्तव्य करना है। तो युद्धाय युद्धस्य युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करेंगे तो क्या होगा, एवं पापम न वापसी, ऐसा करने से पाप को प्राप्त नहीं करोगे, क्या मानने से सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इसकी चिंता नहीं करके अपने कर्तव्य करना है। जो अपने कुछ करते हैं थोड़े साधन भजन करते हैं उसमें ये सोचना नहीं से करने से हमको क्या मिला क्या मिलेगा, सत्कर्म करते हैं तो करना ही है, हमारा कर्तव्य है करना, तुरंत सोचे मुझे क्या मिला क्या मिला क्या मिला क्या मिला, यदि कुकर्म निषिद्ध कर्म तो सोचे मैं क्यों ही कर्म किया मुझे क्या लाभ हुआ इसको आगे नहीं करूंगा, वो सोचो। यदि सत्कर्म करे शास्त्रीय कर्म करे वहां नहीं सोचना मुझे क्या मिला क्या मिला, नहीं मिलने पर भी आप सन्मार्ग में चल रहे हो, इतने बड़ी बात है समझो, परमात्मा की बड़ी कृपा है, क्या कृपा है, सन्मार्ग पर आप चल रहे हम चल रहे सन्मार्ग पर ही बड़ी कृपा है, बहुत मार्ग बहुत भटकने वाले भटकाने वाले बहुत ही, ठीक मार्ग पर कोई चल रहा है यही बड़ी भाग्य है, इसी समय में ठीक मार्ग पर चलो, धीरे भी भले चले कोई बात नहीं, मार्ग पर डटे रहे मार्ग को छोड़े नहीं, जो शास्त्रीय मार्ग उसी मार्ग पर चलना है, अशास्त्रीय मार्ग बहुत ही बह जाना सरल है, भटकने वाले भटकाने वाले बहुत ही, और माया के कारण सब वही अच्छा दिखता है, अच्छा बढ़ चढ़ करके बहुत कुछ होगा, किंतु कुछ भी हो जाए तो अपने मार्ग पर ठीक है धीरे धीरे चले तो भी लक्ष्य को पहुंच जाएगा, गलत मार्ग में चलने वाले लक्ष्य को प्राप्त करेगा कितने जोर से दौड़ने पर जल्दी उतर दो, कितने जोर से जाने पर लक्ष्य को प्राप्त करेगा कौन, गलत मार्ग में चलने वाला, गलत मार्ग में चलने वाले कितने जोर से जाने पर लक्ष्य को प्राप्त करेगा, धीरे जाने पर प्राप्त करेगा, ठीक मार्ग पर चलने वाले धीरे चलेगा तो प्राप्त करेगा, धीरे चलने पर भी प्राप्त करेगा, शीघ्र चलेगा तो प्राप्त तो करेगा, और गलत रास्ता में चलने पर धीरे जाकर प्राप्त करेगा, दौड़ कर प्राप्त करेगा, प्राप्त नहीं कर सकता है। तत् युद्धायु जस्व, ऐसा कण से पाप को प्राप्त नहीं करोगे, अपने को धर्म नहीं करोगे तो पाप होगा। युद्ध करके मर जाओ तो लाभ, हार जाओ तो जीत जाओ तो भी लाभ है, नहीं तो पाप होगा, नहीं तो पाप ऐसा कण से पर पाप नहीं होगा। भय करता था अर्जुन पाप होगा करके, कहते पाप नहीं होगा। श्लोक बोलो, शोक मोह निवृत्ति के लिए अपने धर्म आदि कह करके धर्म करने के लिए कहा गया। वस्तु तो यहां भगवान अर्जुन को जो उपदेश शुरू कर रहे हैं, शोक मोह के कारण की निवृत्ति करना चाहते हैं। वैद्य भी जो अच्छे वैद्य होते हैं, वो देखते हैं ये रोग का कारण निदान क्या है, मूल कारण। आयुर्वेद शास्त्र उसको निदान करते हैं, मूल कारण, रोग का मूल कारण क्या, उसको कैसे नष्ट करो, जड़ से नष्ट करो। जड़ से नष्ट हो जाए तो रोग नहीं होगा, वो नहीं करके ऊपर से कुछ करो तो फिर निकलता है। कोई दीवाले है उस तरफ गौशाला है, कुछ कुछ है उसके कारण, अन्य कोई अपरिष्कार पदार्थ है जिसके कारण दीवाले में कुछ आता है, मैला दिखता है, गीला दिखता है, उसमें से सीमेंट आदि निकल जाता है, उसको छोड़कर फिर नया सीमेंट लगा दिया, उसको फिर पेंटिंग कर लिया, हर साल रंग उसमें लगाते दो महीना फिर निकल जाता है। पहले सोचे इसमें क्यों आता है, कारण क्या है, देखो उस तरफ क्या है, उस तरफ कुछ रखा गया जिसके कारण से आता है, उसको सफाई करो, उधर ठीक करो, अभी इधर लगा दिया तो 10 साल तो कुछ नहीं होगा। मूल कारण नहीं हटा करके ऊपर लगाओ। ये जो चर्म रोग होता है, होम्योपैथी की दवाई देने वाले चर्म रोग का मूल कारण को ठीक करने की दवाई देंगे। शरीर में जो कुछ गलत पदार्थ है, कुछ पदार्थ जो आवश्यक नहीं अनावश्यक है, प्रकृति अपने आप उसको बाहर निकालती है। ये शरीर में इसे भगवान ने बनाया, ये प्रकृति स्वभाव से यदि इसे बाहर नहीं निकले तो कोई नहीं बचा सकता है। जो अनावश्यक पदार्थ है वो अपने आप बाहर निकलता है, निकलता है। बड़े बहुत क्या क्या भगवान ने बनाया, मनुष्य से नहीं बना सकता। रास्ता में अपरिष्कार वो बाहर निकला, मलमूत्र से तो निकलता है ही, पसीना से भी निकलता है, कभी अपरिष्कार उनसे फोड़ा निकलता है, फोड़ा निकल करके उसमें कुछ अपरिष्कार निकल गया। होम्योपैथी दवाई देंगे उसको निकाल करके निकाल दो साफ हो जाए, और उसको निकाल नहीं करे उसमें दवा दो तो जो अपरिष्कार पदार्थ अनावश्यक उसको निकालने के लिए प्रकृति के फोड़ा निकाला, निकाल कर उसको हटाना चाहिए, और उसको बराबर समान करके काटकर ड्रेसिंग करके उसको दबा दो, वो नहीं निकल पाएगा, वहीं रह गया, वहीं तो रह गया, फिर कहीं दूसरे सामने निकलने के जा पाएगा, वहां फिर दबा दो, नहीं निकल पाएगा तो फिर अंदर जो यंत्र है उसको खराब करेगा। जो निकल जाना चाहिए नहीं निकल पाए तो खराब करेगा। मूल कारण को नाश करना चाहिए। शोक मोह का मूल कारण अज्ञान है, अज्ञान की निवृत्ति के बिना शोक मोह का नाश नहीं होता है। इसे भगवान ये उपदेश करना चाहते हैं, अभी तो उपदेश किया, इसलिए अभी केवल कहा दिया युद्ध आदि करने के लिए। शास्त्र विहित तो कर्म किस लिए करना चाहिए, शास्त्र विहित तो कर्म खाली यही जो स्वर्ग प्राप्त करना, जीत लेना, भोग करना, इसके लिए नहीं है। दो ही योग गीता में है, आगे स्पष्ट हो जाएगा, एक ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। निष्काम कर्म करने पर ही ज्ञान प्राप्ति होती है, सकाम कर्म से नहीं। इसलिए कर्म जो कर्म बंधन का कारण, वही कर्म निष्काम करने पर अंतकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति होकर के मोक्ष का साधन होता है। कौन साधन होगा मोक्ष का, कर्म। जो कर्म स्वयं बंधन है वही कर्म ज्ञान का साधन हो जाएगा, मोक्ष का साधन हो जाएगा। किंतु कब, निष्काम करे, परमात्मा अर्पण करके। इसे उसके लिए आगे आरंभ करते हैं, दोनों शास्त्र का विभाग दिखा कर स्पष्ट करके दिखाएंगे। ऐसा ते भीता सांखे बुद्धिर्योगे त्विमां श्रृणु, बुद्ध्यायुक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। पूर्व श्लोक बोलो सुख दुखे इसमें चतुर्थ पाद में कितने पद हैं? हाँ ठीक है। सुख दुखे क्या विभक्ति मालूम है किसको? सप्तमी, जैसे रामे बनता है इसी प्रकार एक कार्य देकर सत्य नहीं करना। लाभा लाभो क्या भी होते होगा है? हाँ दो हो सकते हैं किंतु है क्या है यहां द्वितीय। तो इसी प्रकार सुख दुखे भी द्वितीय है। सुखम च दुखम चेति सुख दुखे द्विवचन, प्रथम द्विवचन भी सुख दुखे, द्वितीय भी इसे बनेगा। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि यहां द्वितीय है। सुख दुख को समान करके कर्म है लाभ लाभ जया जयो ये द्वितीय है, प्रथमांत है ये भी द्वितीय है। इनको जया जय समान करके ततो क्या भी होते मालूम? ततो ये अव्यय होता है, तत अव्यय युद्ध है नहीं एवं इसमें कोई अव्यय है दोनों न्यव्य एवं अव्यय। अभी ऐसा ते विहिता सांख्ये, ऐसा ते सांख्ये अभिहिता, अभिहिता का क्या अर्थ है? कही गई सांख्ये ये बुद्धि तुमको कही बुद्धि, ऐसा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता, ये जो बुद्धि मैंने बताई ये सांख्य परमार्थ वस्तु विवेक के विषय में कहा गया स्पष्ट रूप से कही गई। इमाम योगे तो सुनो, कर्मयोग में जो ज्ञान प्राप्ति का साधन उसमें इसको सुनो। अभी कर्मयोग के लिए बताएंगे, ज्ञान प्राप्ति का साधन है निस्संग होकर के फल इच्छा रहित होकर के सुख दुख लाभ हानि आदि को समान करके ईश्वर की पूजा। शास्त्र भी तो कर्म करना ही ईश्वर की पूजा। वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम अगे तेने सत्य विधीयताम अपचिति काम्ये मति त्यज्यताम। आगे मालूम है दुसोनुसंधीयताम आत्मे इच्छा व्यवसीयताम निज गृहात तुन्नम विनिर्गम्यताम। याद है कितने लोगों? हाथ उठा कितने को याद है? एक दो तीन। अच्छा और किसको नहीं? हाँ कोई बात नहीं, जिनको याद है बोलो। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां तेने सस्य विधीयताम अपचिति काम्ये मुक्ति त्यज्यतां पापो गपरिदूयतां भवसुखे दोषोनुसंधीयता आत्मेच्छा व्यवसीयता निज गृहात् तो नम्यता। भगवान भाष्यकार ही कहते हैं, क्या नाम इसका? साधन पंचकम, पांच साधन एक एक श्लोक में, चार पाद में, एक पाद में दो दो करके। वेद और नित्यम अधीयता पहला है, वेद का अध्ययन करो। वेद नहीं तो वेद के अनुसार वेद मूलक स्मृति गीता आदि रामायण महाभारत भागवत इसका रोज पढ़े, शास्त्र का पढ़ना है। शास्त्र का अध्ययन रोज करने के लिए कह दे नित्यम अधीयताम, रोज बार बार अध्ययन करे। खाली अध्ययन कर देने से नहीं, फिर क्या करना? तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, शास्त्र में जैसे बता गया ऐसे कर्म करो। जो शास्त्र में पूरा मार्गदर्शन है, अष्टादश पुराण में सब कुछ है। पुराण में किसी पुराण को लेकर जाने रामायण महाभारत इत्यादि में खाली आख्याय का सुनने के लिए नहीं, कर्तव्य क्या है समझना। जो कहा गया तदुतितम कर्म सु अनुष्ठियता, अच्छी तरफ से करे, ऊपर ऊपर से नहीं। शास्त्र में जो कहा गया वही करो। अब करने से क्या होगा, क्या होगा कि तेने सत्य विधियताम, इससे ईश्वर की पूजा हो जाती है। शास्त्र विहित कर्म करने पर ईश्वर की पूजा हो जाती है। ईश्वर की पूजा करे शास्त्र विरुद्ध मत में चले, भगवान इसे पूजा नहीं चाहते। कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है और फूल फल माला लेकर गंध पुष्प लेकर मंदिर में चढ़ाएगा, भगवान ऐसे भक्त को नहीं चाहते। भगवान कहते तुम शास्त्र विहित कर्म करो, हमारे पास नहीं चढ़ाने से भगवान को, मिर्च चढ़ाने से भगवान को क्या मिल जाएगा, उनके पास बहुत फूल चढ़ाने से भगवान धनी बन जाएंगे, कुछ नहीं, कोई नहीं तो कुछ नहीं, अपने कर्तव्य करो। शास्त्र भी तो कर्म करने से ईश्वर की पूजा असली पूजा होती है। इसलिए कोई पिता माता की सेवा करके भगवान को प्राप्त कर लिया, गुरु आज्ञा पालन करके भगवान को प्राप्त कर लिया। श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा, वेद श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञा और उसके आज्ञा का पालन करे, तेने सत्य विधियताम अपचिति। आगे क्या कहते हैं, काम्य मति त्यज्यताम, शास्त्रीय कर्म करते समय काम्य कामना के विषय में बुद्धि को छोड़ो। ये इष्ट मुझे मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, सुख मिल जाए, कुछ करते तो हमको प्रशंसा कोई करे, हमारे बाबा हो, ये भावना बहुत निकृष्ट है। सत्कर्म करते समय यदि ये भावना आ गया गया, उसके पीछे कुछ नहीं करे तो अच्छा है, कुछ करे उसके पीछे क्या सोचे, लोग हमारे बाबा करे, हमारा नाम आ जाए, ये भावना तो कुछ नहीं। अहंकार मैं करता हूं, ये धर्मध्वजी तो ये तो कुछ नहीं, अब कामना से कुछ नहीं, निष्काम होकर करे, तेन ये आगे साधन है। तो शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए और उसमें निष्काम होकर के, बुद्धि योग है ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग में आरूढ़ होने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के साधन है कर्म योग, किन्तु निष्काम होकर करे। तो योगे तो इमान श्रणु यया बुद्ध्यायुक्तो कर्म बंधम प्रहास्यसी, कर्म ही बंध है कर्म बंधम, कर्म ही बंधन, बंधन का कारण है कर्म ही, बंधन का कारण पाप कर्म या पुण्य कर्म दोनों है, एक लोहे के बेड़ी एक सोने के बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी है बांधने वाला है। स्वर्ग पुण्य कर्म से स्वर्ग जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, हाँ वही कर्म यदि निष्काम होकर करे, ईश्वर अर्पण बुद्धिया करे, वही कर्म अंतकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन, मुख्य का साधन हो जाएगा। इतने है, वही कर्म करके कोई बंधन, कोई वही कर्म करे तो मुख्य, उसको कर्म योग कहते हैं। कर्म तो एक कोई करता है फल की इच्छा से, और एक कर्म करता है फल इच्छा रहित तो होकर के, वही कर्म योग हो गया जो ज्ञान प्राप्ति का साधन। यया बुद्धियायुक्त कर्म बंधम प्रहास्यसी, कर्म रूप जो बंधन को छोड़ दोगे, धर्म अधर्म रूप कर्म इसको छोड़ दोगे, कैसे छोड़ दोगे, ईश्वर अर्पण बुद्धिया कर्म करने से पहले अंतकरण की शुद्धि, पाप की निवृत्ति, फिर ईश्वर की प्रसन्नता, ईश्वर प्रसन्न होने पर आगे सद्गुरु की प्राप्ति, फिर ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति होने से सारे पाप कर्म पुण्य के सब नष्ट होकर के मुक्त हो जाओगे, परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। यही कर्म जो थोड़े थोड़े धन संचय होता है, थोड़े थोड़े धन बढ़ाते बढ़ाते बहुत धन हो जाता है, पाप कर्म थोड़े थोड़े कोई करते करते बहुत पाप कर लेता है, सत्कर्म थोड़े थोड़े करते करते बहुत, आगे आने पर हम करेंगे, आगे भी हम करेंगे, आगे करेंगे, ऐसा नहीं समझे ना। कोई सोता है धन कमाने के लिए, अभी तो नहीं बाद में हम धन कमाएंगे, कोई सोता है धन मिलता जब मिलता तभी कमे, पढ़ते पढ़ते भी कोई धन कमाने लग जाते हैं, कोई व्यवसाय कर लेते हैं, नौकरी कर लेते, कुछ ना कुछ करके धन कमाते हैं। पुण्य कमाने के लिए कब कमाना, पुण्य कितने साल के बाद, कितने साल उम्र होने के बाद पुण्य करना चाहिए, शुरू से ये वास्तव धन तो ही है, जो वास्तव धन उसको कमाते नहीं, जो अवास्तव छोड़कर जाना उसको कमाने की जिंदगी भर लगी, सारा जीवन भर धन कमाने में, किन्तु वास्तव धन कौन है, जो सत्कर्म है पुण्य कर्म, वो शुरू से थोड़े थोड़े करते करते, थोड़े थोड़े सत्संग करता है, थोड़े थोड़े श्रवण करता है, तो धीरे धीरे बढ़ता जाता, संपत्ति बढ़ती है। केवल उस समय देखना है जो वास्तव उद्देश्य क्या है, अपना उद्देश्य रहना चाहिए, महत्व उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति के लिए, वो भावना हो, ये उद्देश्य से करें। कभी कभी मनोरंजन के लिए सत्संग हो जाता है, बहुत सत्संग का मनोरंजन अच्छा लगता है, दो तीन घंटा चला गया, नाचना कूदने करके आ गया, मिला कुछ नहीं, वो कुछ लक्ष्य नहीं प्राप्ति। लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो भावना से करें। तो कर्म बंध का त्याग करने के लिए कर्म ही, जो कर्म बंधन का कारण, वही कर्म ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मोक्ष का साधन हो जाता है। ये दो मार्ग गीता में, कर्म और ज्ञान मार्ग, आगे स्पष्ट हो जाएगा। अभी कहेंगे ये सांख्य विषय में, तो परमार्थ तत्व विषय में ये बुद्धि कही गई, और कर्म योग में अभी हम कहेंगे। श्लोक बोलो। अभी कर्म योग के लिए थोड़ा उसकी स्तुति करते भगवान। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रथम पादे, कितने पदे? तीन चार पांच, तीन प्रकार आया, कितने? चार पदे, न एक है, यह एक है, आगे अभिक्रमनाश एक पदे है, कितने पद हुआ? चार। कितने पद हुआ? चार। तृतीय पाद में कितने पद है? स्वल्पम अपि अस्य धर्म से चार भाई सरल आगे प्रत्यवाय में भी देते त्राय धर्म। तो यह अभिक्रमनाश नास्ती, यह कहते मोक्ष मार्ग में कर्मयुग में अभिक्रमनाश नहीं, अभिक्रम प्रारंभ, कुछ का आरंभ करते है, प्रारंभ करते उसका नाश आने नहीं है। कृषि करते हैं कभी कभी वर्षा बहुत तो हो गए, वन्य आकर के हानि हो जाती है। व्यवसाय करते हैं कभी कभी धन डूब गया, नहीं मिला। ये सन्मार्ग में थोड़े थोड़े भी कुछ करते हैं कर्म, चिकित्सा औषध देते हैं, औषध देने पर रोग निवृत्त होता है। कभी कभी कोई औषध में गलती हो, औषध निश्चय करने में गलत हो, रोगी का कर्म हो, रोग औषध दिया किन्तु रोग के लिए वृद्धि हुई, रोगी मर गया, किसी कारण से हो सकता है। औषध गलत हो सकता है, जो औषध दिया गया उचित नहीं ये भी हो सकता है। रोगी का कर्म समाप्त हो गया तो औषध ठीक देने पर क्या मरेगा? समय आए तो औषध ठीक दो, डॉक्टर ठीक हो तो क्या खत्म हो जाएगा। तो चिकित्सा शास्त्र में भी दवाई दिया से हो गया, कभी कभी रोग तो निवृत्त हुआ, कभी नहीं हुआ। बहुत समय रोग ठीक होता है, कभी कभी विपरीत हो जाता है। वाणिज्य करते धन कमाते, कभी कभी गिर गया, हानि हो जाती है। बहुत धन कमाने वाले कभी कभी हानि में, बहुत लोग अभी कहते हमारे पास कुछ नहीं रोटी खाने के, नहीं बोले हमें खाली ऊपर ऊपर से दिखता है, सब लोग को कहते बड़ा है किन्तु हमारे पास है ही नहीं। तो धन बड़े बड़े बहुत लोग रखे हैं, नौकर नौकर उनके पास इतने धन कमा करके सुखी से है, और जो मालिक है उसके पास धन नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं। तो कभी हानि हो जाती, कभी लाभ, कभी होता तो फिर बहुत कमा लेते हैं, किन्तु यहां नेहाविक्रमनाश होती। यह जो धर्म है, थोड़े से भी धर्म करता है उसका नाश नहीं होता है, फल अवश्य देने वाला है, हानि नहीं है। यहां धन संचय क्या, व्यवसाय करने के लिए कभी हानि हो गई, कृषि करने के खेती के लिए बहुत क्या, बाढ़ आ गई नष्ट हो गया, पानी नहीं मिला मरुभूमि से सब नष्ट हो गया, चिकित्सा में औषध देते कभी होता है ठीक, कभी नहीं होता है, कभी हानि हो जाती है। किंतु ये मार्ग में, यहां कर्म मार्ग में, मुख्य मार्ग में शास्त्र भी तो कर्म थोड़े से भी किया उसे कभी नष्ट नहीं होता है। कोई कहता है हम इतने कर्म करते समय तो नष्ट हो गया, कुछ कर्म क्या समय नष्ट हो गया, उस समय हमें कुछ दूसरे करते, जो कुछ करते हैं वही कर्म ही वास्तव संपत्ति है, अन्य उससे अधिक नहीं है। सत्कर्म जो सत्कर्म करते हैं वही संपत्ति है, अन्य उसके सामने सब जितने है विपरीत है। सत्कर्म का निषिद्ध कर्म करेगा, विहित कर्म छोड़ करके निषिद्ध कर्म करेगा तो क्या कमाएगा? पाप कमाएगा। पुण्य छोड़ करके जब पाप अधिक होता है ये भावना आती है, ये कर्म कम से हमको क्या मिला, उसके पीछे हम कुछ दूसरे करते। कोई कहता थी दूसरे काम करो, दूसरे काम करने लग गया, व्यवसाय क्या गया, सो खत्म हो गया। किंतु जो थोड़ा भी क्या, भगवान का नाम लिया, जप ध्यान किया, कुछ पढ़ा, कुछ श्रवण किया, वो नष्ट नहीं होता है। अभी तुरंत पढ़ते ही जप करते ही भगवान दर्शन हो जाते हैं तो फिर समय नष्ट हुआ ना, जप करने से क्या लाभ हुआ? कोई कहेगा जप इतने समय क्या मंदिर में गया, क्या तुमको मिला बताओ, दिखाओ। बुद्धिमान लोग कहते क्या मिला बताओ, इतने समय नष्ट क्या बर्बाद किया, क्या क्या बताओ, क्या मिला तुमको दिखाओ, क्या दिखाओ क्या मिला। जो मिला है जो प्राप्त करता है वही जानता है, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। ऐसा कहने वाले की अपेक्षा कर दे उसको तो जैसे, किंतु थोड़े से भी कुछ किया जो कुछ सत्कर्म है वो कर्म नष्ट नहीं होता है, अवश्य ही वो कर्म फल देता है समय आने पर। यही से थोड़े थोड़े पुण्य कर्म, कितने करोड़ जन्म के पुण्य कर्म इकट्ठे होने पर ही वेदांत श्रवण करने को प्राप्त होता है। यमराज ने कहा न चेत श्रवणायापि बहुबीर हो न लभ्य, प्राप्त नहीं होता है। तो कितने पुण्य कर्म, एक ग्रंथ पढ़ते सुनते हैं, पुस्तक में एक बार चातुर्मासी किया था सुकृताल में, एक दंडियाश्रम दंडी स्वामी थे विष्णुआश्रम करके अच्छे पुराने संत, मैं वहां पंचोदेश का पाठ चलाया, दंडी महात्मा बैठे थे और विष्णुआश्रम स्वामी जी बैठते थे। पाठ चलाने के पहले उन्होंने थोड़ा सा बता दिया, देखो तुम्हारे हाथ पर जो पंचोदेशी पुस्तक है उन्होंने बताया तुम्हारा कितने जन्म के पुण्य के कारण तुम्हारे हाथ पर पंचोदेशी पुस्तक है समझ लो। कैसा हम जब अभी पाठ शुरू कीजिए, उनको बता दिया इतने कितने जन्म के पुण्य के कारण तुम्हारे हाथ पर पंचोदशी पुस्तक है, अभी इसको श्रवण करो ठीक रोज आकर के। रोज पाठ चला दो ढाई महीने तक महात्मा लोगों को, दंडी स्वामी महात्मा को, तीन जन्म के अंदर एक जन्म में अभी में उतर जाएगी, तीन जन्म क्या है, ज्ञान हो गया तो जब ज्ञान हुआ तभी। यदि देहम पृथकृत्य चीति विश्राम में तिष्ठसी अधु नहीं वसु किसान तो बंध मुक्त भविष्य सी, योग वाष्ट्र में आया, यह योग वाष्ट्र में अष्टावक्र में, अष्टावक्र में चेतन को अलग करके चित्ति पृथकृत्य देह को भिन्न समझ लो, चित्त रूप में स्थिर हो जाओ, देहम पृथकृत्य थूल सूक्ष्म कारण शरीर को अलग समझ करके चित्त रूप में वो निश्चित हो गया, अधु नहीं इसी समय सुखी शांत बंध मुक्त हो जाओगी, ज्ञान हो गया तो इस जन्म हो जाएगा, अज्ञान नहीं होता तीन क्या तीन करोड़ जन्म होने पर नहीं होगा। इसके पहले कितने जन्म हो गए, तीन जन्म नहीं, इसके पहले हजार जन्म भी साधन में लगे हैं, हजार जन्म साधन लगने पर भी लगे रहने पर ज्ञान हो गया तो हो गया, साधन में लगने पर भी साधन करते करते पाप कर्म भी हो जाते हैं। साधन में एकदम लगे लगा है ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ठीक है, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो साधन करते समय भी कुछ हो जाता है। 24 घंटा साधन में लग जाना कहाँ संभव होता है, 24 घंटा ध्यान कर लग जाओ कहाँ होता है, भगवान का नाम जप करते समय जितने दोष असु छोड़ करेगी, राग द्वेष छोड़ करके, राग द्वेष कहाँ छूट जाता है जल्दी, विशेष और राग द्वेष पूरा छोड़ कर लग जाए तो जितने जितने साधन थोड़े थोड़े करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब समय आएगा एक समय में सब छोड़ देता है तो तुरंत ज्ञान प्राप्त होगा तो मुख्य हो जाएगा। तीसरे कितने जन्म होगा कोई निश्चय नहीं कर सकते हैं। तीव्रता कैसे, हाँ पहले लक्ष्य निश्चय करें क्या चाहिए, लक्ष्य निश्चय करें तो तीव्रता आई, क्या हमको चाहिए, हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, ये बार बार विचार करें क्या चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक रास्ता पर चल रहा हूँ या गलत रास्ता पर चल रहा हूँ, ठीक रास्ता क्या है, ऐसे करके विचार कर चलना पड़ता है। तीव्रता बार बार विचार करके सोच करके लक्ष्य निश्चय कर चलना। जैसे कहीं जाते हैं रास्ता भूल जाते हैं, गाड़ी में हो पर बार बार पूछते हैं नहीं, ये रास्ता जाना कहाँ जाना कहाँ जाना। अजय कोई गलत रास्ता ठीक रास्ता कैसे, कहीं गलत रास्ता नहीं ठीक रास्ता में चलो, यही करना पड़ता है। शीघ्र पहुंचना हमको किस स्थान पर, सबसे शॉर्टकट रास्ता कहाँ, कैसे जल्दी पहुंचे पूछते हैं। इसी प्रकार इसी के लिए चल ले तो पहुंचेंगे जरूर। तो कितने जन्म के पुण्य कर्म से ही आगे ये साधन में कोई लगता है और थोड़े थोड़े करते करते बढ़ता है, फिर प्राप्त होता है। अंतिम तो जब ज्ञान होगा एक क्षण में ज्ञान होता है, मुक्त हो गया। किंतु ज्ञान होने के पहले, ज्ञान से तो मोक्ष है, ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने जन्म के साधन है। यया बुद्ध्यायुतो कर्म बंधन प्रायश्चसी। अच्छा, नेहा विकर्म नाश होती प्रत्यवाय न विद्यते। कुछ चिकित्सा में शास्त्र में कुछ करते कभी कभी हानि हो जाती है, किन्तु इसमें सत्कर्म करते समय कोई हानि नहीं। तो लाभ तो जरूर है, दिखता नहीं किन्तु लाभ है, थोड़े से भी करते तो लाभ होता है। प्रत्यवाय न भी देते अस्य धर्मस्य स्वल्पमपि महतो भयात्रायति। इसी धर्म से धर्म संबंधी स्वल्पमपि, केवल थोड़ा सा भी कर्म श्रुति में जो कहा गया, स्मृति में कहा गया, स्मार्त उपासना, थोड़े से जो कर्म किया श्रद्धापूर्वक किया, इसी धर्म का शास्त्र भीतर कर्म का मन माने नहीं, शास्त्र भीतर श्रुति स्मृति में जो कहा गया थोड़ा सा भी किया, स्वल्पमपि धर्म से स्वल्पमपि किया हुआ कर्म उपासना अंतकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान हेतु होने से महतो भया त्रायते। महतो भया बड़े भया से रखे, बड़े भया के भय क्या है, ये संसार भय। सबसे बड़ा भय क्या है, संसार रूप भय। संसार भय संसार क्या, जन्म मरण आदि, जन्म मरण जरा व्याधि रोही जो संसार है इससे रक्षा करता है। स्वल्पमपि थोड़े से भी किया तो रक्षा करेगा, क्रम से परंपरा से, थोड़े करने से तुरंत नहीं किंतु थोड़े करने पर वही अंतगुण शुद्धि ज्ञान प्राप्ति के द्वारा रक्षा करता है, व्यर्थ नहीं होता है। थोड़े भी कुछ किया व्यर्थ नहीं होता है, इसलिए जितना हो सकता है सत्कर्म इकट्ठी करते रहे, निषिद्ध कर्म छोड़ करके। ये भगवान भाष्यकार कहते हैं कर्म साधन क्या करना है, साधन तो ये कि दुश्चरितार्थ निवारण, निषिद्ध कर्म को छोड़े सन्मार्ग में चले, ये सबसे बड़ा साधन। अपने में क्या क्या गलती दे करके गलती से को छोड़े और सन्मार्ग में चले। निषिद्ध कर्म होता तो उसको छोड़ना है, राग द्वेष होता उसको छोड़ना है, काम क्रोध लोभ होता उसको छोड़ना है, दूसरे अपकार करने के लिए कभी दुर्भावना इसको छोड़ना है। अपने आप स्वयं दे करके सन्मार्ग में चलना और निषिद्ध कर्म छोड़ना, यही साधन है। कुछ ना कुछ दोष रहता है जो अपने आप को मालूम है और प्रयास करना पड़ता है मेरे दोष है उसको छोड़ना है। अंत में अहंकार को भी छोड़ना है, इसलिए अहंकार को छोड़ने के लिए जाते हैं गुरुकुल में सेवा करते, मंदिर में जाकर सेवा करो, कहीं भी सेवा करे, सेवा करने से अहंकार नष्ट होता है। जहां मंदिर में वहां जाकर झाड़ू पोछा लगाए कोई कर सकता है करोड़पति करते है ऐसे गुरुकुल में जाकर के, अपने घर में सब कुछ है, गुरुकुल में जाकर स्वयं अपने करते कर्म। कहीं कहीं घर में तो नौकर रखे थे, वहां जाते तो अपने बर्तन धोकर, कला शास्त्र में ऐसा है भक्त लोग जाते हैं भोजन करने का तो बर्तन अपने आप बर्तन धो कहीं फेंकते, कभी कभी धोने वाला होता है, कभी अब बड़े बड़े इस प्रकार स्थिति है, बड़े बड़े मालिक भी नौकरी के अधीन हो जाते हैं, नौकर नहीं मिला भाग गया तो क्या करेंगे, करना पड़ता नहीं अपने। तो इसी प्रकार ये पहले से साधु महात्मा कहते हैं जितने हो सकता अपने स्वयं दासा तपस्वी न हो, तपस्वी तो अपने दास अपना ही है, अपने कर्म करो। जितने गुरुकुल में जाते किस लिए, सबसे बड़ा है अहंकार को छोड़ना है। बहुत राजा महाराज जो गुरु के अधीन जाते थे छोड़ देते हैं, सब अहंकार छोड़ करके। जनक याज्ञ बोल के संवाद में जो ज्ञान प्राप्ति के समय आता है, जनक कहते हैं मैं सारे मिथिला राज्य को दे देता हूं, माम चापी सह दास्याय, हाँ मुझे भी ले लीजिए, मैं मुझे आप नौकर बनाकर सेवा में लगाए, जो कुछ करिए। गुरुकुल में जाकर सेवा कर दिया, अहंकार बड़ा शत्रु है, इसको छोड़ना पड़ता है, छोड़ने के लिए इसे सेवा करते हैं। तो प्रयास करने पर, लगने पर, चलने पर अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य महोतो भया त्रायते, श्लोक बोलो। ये सांख्य में परमार्थ संबंधित बुद्धि कही गई, योग में कहेंगे शास्त्र का निश्चय तो बिल्कुल दृढ़ है, उसको समझ करके उसके अनुसार चलना। जो अशास्त्रीय मार्ग है अनेक प्रकार है, अनेक मार्ग, शास्त्रीय मार्ग एक है, सत्य तो एक सरल है, गलत मार्ग में चलो तो बहुत है, सत्य को बोलो तो सरल से सत्य वासन हो जाएगा, सत्य को छिपा कर झूठ बोलो तो कितने बोलना पड़ेगा, एक सत्य को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलना पड़ेगा, और सच बोल दे तो हो गया, पूरा हो गया। यहां कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहु शाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसाय निश्चय, व्यवसायत्मिका तो निश्चयात्मिका बुद्धि, एका यह है कुरु नंदन। यहां श्रेय मार्ग में शास्त्र के अनुसार चलने के लिए श्रेय मार्ग में निश्चयात्मिक बुद्धि एक है, परमात्मा तत्व के लिए शास्त्र मार्ग एक दृढ़ निश्चित है, एका ही कुरु नंदन। और अव्यवसायी नाम जिनका निश्चय नहीं, शास्त्र सिद्धांत को छोड़ करके अलग अलग मार्ग में चलने वाले, उनका बहु शाखा अनंताश्च बुद्धय, बुद्धि बहुत है, शाखा बहुत है, कितने है अनंता, भेद तो बहुत है, बहुत है, भिन्न भिन्न होकर के विभिन्न संसार, अनंत का तो संसार भी अंत नहीं होता है, अलग अलग मार्ग में चलने पर संसार समाप्त तो नहीं होता है, सारे मार्ग सब जितने है परमार्थ तत्व ज्ञान के लिए सब कुछ है, इधर उधर भटक भटक करके अंत में इसी मार्ग में चलना पड़ता है, वही अंत में वैदिक मार्ग। कभी कोई दूसरे मार्ग पर है, साधना करता है, कुछ ना कुछ सत्कर्म करता है, तो कभी समय आएगा इसी मार्ग में चलेगा, ये वैदिक मार्ग, ये ज्ञान प्राप्ति का साधन। अन्य मार्ग में साधना करे, ठीक साधना करता है तो अंतकोण शुद्ध होगा जरूर, अंतकोण शुद्धि तक है, इतने ज्ञान के बिना मुख्य नहीं, अज्ञान वेदांत श्रवण से होगा। तो अन्य जितने सब संसार ही चलता है, अलग अलग सब वेद में, विभिन्न शाखा में, श्रुति में, अलग अलग मार्ग में बहुत प्रकार है। यहां तो प्रमाण से उत्पन्न बुद्धि एक है, शास्त्र श्रुति प्रमाण, श्रुति के निमित्त स्मृति प्रमाण, ऐसे प्रमाण से होने वाली निश्चित बुद्धि एक है, और प्रमाण के बिना अलग अलग कल्पना, अलग अलग तर्क, अलग अलग मतलब चलने वाले बहुत है। वो बहुत होने पर उनके प्रमाण से नहीं होने के कारण अलग अलग है भ्रांति, विभिन्न प्रकार कल्पना, विभिन्न प्रकार कल्पना करते करते अलग अलग मत जितने चलते चलाते हैं, कुछ इसका आंसर लेंगे, बाकी कुछ अपना मत जोड़कर अलग अलग मार्ग। कुछ लोग इसे भावना है कि हमारे एक अलग मार्ग हो जाए, धन संपत्ति इकट्ठे हो गया, लोग बहुत मानने लगे, फिर अपने को भगवान मानने कहने लगे, कोई कहते अपने हम ही भगवान, कोई कहते हमें अलग मार्ग चलाएंगे, कोई कहते हमें वेद के सार को लेकर के मार्ग चलाएंगे, वेद में कुछ असार है वो सार को लेकर के, कहते हमारे गुरुजी वेद के सार को लेकर मार्ग बनाए, ऐसे ऐसे करके अलग अलग, हमें अलग मार्ग, हमारा नाम अलग हो, जहां ये भावना हो जाए ना, हमारे नाम अलग, हमारे मत अलग, हमारे मार्ग अलग, हम कुछ है, ये जो हम कुछ है ये तो अहंकार शुरू हुआ। महापुरुष जो हमारे आचार्य थे तीर्थेश्वर महाराज जी, कोई कहा महाराज जी आप कुछ ग्रंथ लिखे, कैसे भी जी इतने ग्रंथ है कोई पढ़ने वाला नहीं, ग्रंथ क्या लिखेंगे, लिखने के समर्थ है, फिर ग्रंथ क्या लिखेंगे, अभी ग्रंथ कोई पढ़ने वाला नहीं, प्रस्थान तभी पूरा नहीं कर पाते हैं, कोई ग्रंथ क्या लिखेंगे। ग्रंथ लिखना वास्तव ग्रंथ को से लिखना दूसरे उपकार के लिए अलग है, और ग्रंथ लिखना हमारा नाम हो, लोग समझे बहुत बड़े विद्वान ग्रंथ लिखा, ये भावना उद्देश्य क्या है देखना होता है, जिसका जो उद्देश्य उसके अनुसार वही करता है, फल प्राप्त करता है। सही, इसलिए शास्त्र जनित बुद्धि, शास्त्र प्रमाण से होने वाले ये ज्ञान परमात्मिका उद्दृढ़ निश्चय एक है, उसके अनुसार चलना है। अब अप्रमाण से कल्पित अलग अलग मत बहुत ही, वो स्थिरता नहीं उसमें, और संसार की निवृत्ति नहीं होती है, कभी ना कभी शास्त्रीय मार्ग पर चल करके ही परमात्मा साक्षात्कार ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त करेगा, यदि सन्मार्ग में चले। हाँ, अलग अलग मार्ग में कुछ यदि बताते हैं, अच्छा बताते करने पर परमात्मा कृपा करके उसको फिर सन्मार्ग में चला लेते हैं। श्लोक बोलो। जो शास्त्र विरुद्ध है, अशास्त्रीय मत है, कल्पित मत है, कुछ नहीं, कुछ नास्तिक मत है, वेद के विरुद्ध मत है, उनकी तो गिनती नहीं करना, उनको तो छोड़ना। शास्त्र में भी कर्म कांड करने वाले कर्म में इतने आगे बढ़ जाते हैं, कहते स्वर्ग ही सब कुछ हो गया, अपाम सोमम अमृत आबूम, सोम आकर के सोम पान क्या मुक्त हो गए हम, अभयम भी चातुर्मासी याग जिन्हों सुकृता भवंती, चातुर्मासी की याग है उसका फल अभय होता है, नित्य हो जाता है, ऐसे सब वाक्य है वेद में, ऐसे कर्म कहने के लिए कहा गया। कर्म फल की स्तुति भी की, कर्म फल बताया, कर्म करने से कर्म फल मिलता जरूर, और कर्म फल मिलने से स्वर्ग आदि प्राप्ति सुख प्राप्त करते हैं, उपासना कर से ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते है, जरूर है, किंतु संसार की निवृत्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो साधन नहीं है। किंतु जब कहेंगे ये कर्म करिए फल मिलेगा, ये कर्म करिए फल मिलेगा, कोई बताते मैं मंत्र बता दो, ये मंत्र मिलो जप करो तो धन मिल जाएगा, ये कोई मंत्र मिले तो तुमको चमत्कार मिल जाएगा, कोई साधु ढूंढता है हम थोड़ा चमत्कार सीखेंगे, कुछ जो लोग चमत्कार दिखा सके, जादूगर के कोई जादूगर हमारे पास आए थे, जादूगर जादू कुछ दिखाया, एक जादूगर थे बच्चे जादूगर साधु बन गए अभी भी, उनके लड़का भी जादू दिखाता देश विदेश से, वो भी साधु बन गया अभी भी है। तो बताया महात्मा लोग मेरे पास आते थे, कुछ हमको सिखा दो जादू, क्या करने के लिए हम थोड़ा दिखाएंगे, जादू दिखा कर लोगों को क्या करने के लिए, आकर्षण ठगने के लिए, आकर्षण का सहने लूटने के, ठगने के, लूटने के लिए। तो बताया, वो तो स्वयं जादूगर थे, वो देखा इसको करके धन संपत्ति कुछ हो गया, बाद में उनका वैराग्य हुआ, बोले ये सब करने के अपेक्षा साधु बनेंगे, साधु बन के जितने भी वो तो वैराग्य हो उनमें है कि हम साधु बनेंगे, और जो साधु बने उनके पास जाते सीखेंगे हम थोड़ा चमत्कार दिखा, वो तो चमत्कार दिखाते बहुत दिखा सकते हैं, वो चमत्कार दिखाने के उनके पास देखा है, बहुत लोगों के बीच में कोई चमत्कार दिखा देते हैं कभी कभी दिखाने के लिए, ऐसे कभी देखा है दिखाते हैं, तो वो साधु बन करके चमत्कार दिखाने का उद्देश्य क्या है, परमात्मा प्राप्ति, मार्ग अलग हो गया। इसलिए ये जो मार्ग छोड़कर अलग मार्ग में चलने वाले बहुत ही, किंतु मार्ग में चलने वाले ये चमत्कार सुन करके वेद में ये कर्म करो स्वर्ग मिलेगा, ये कर्म करो ये फल मिलेगा, ऐसा सुनने पर बड़ा चाल होता है, तो फल मिलता है तो तुरंत वो कर्म करेंगे, कोई कोई जप करते ये जप करो तुमको धन मिल जाएगा, ये कर्म जप करो सिद्ध हो जाएगा, कोई कोई लोग जप बताएंगे अमुक मंत्र जप कर ये फल हो जाएगा, लोग आकर पूछते हैं, कोई परेशानी होकर के बड़े धन नहीं क्या करेंगे, बार बार आकर के थोड़ा हमको कोई मंत्र बता दो, किसने मंत्र बताते हैं, जो हमारा कुछ व्यवसाय भी चले थोड़ा धन मिल जाए, बच्चे हमारे पढ़ते हैं छोटे है, कुछ नहीं करोड़ रुपया है किन्तु कुछ काम नहीं होता है, थोड़े कृपा कीजिए, कृपा करते करते हम तो मंदिर में भेजते जाओ भगवान से प्रार्थना करो, फिर मंत्र के लिए क्या, हमें मंत्र तो परमात्मा प्राप्ति के लिए मंत्र, और मंत्र धन कमाने के लिए कोई बताते हमको तो मालूम नहीं, धन के लिए मंत्र है कुछ मंत्र आदि है, वो मंत्र से कोई मतलब नहीं, जैसा भी हो ये अलग अलग प्रकार से शास्त्र में है, उसको सुन करके तो ऐसे सुन करके फिर उसे मन मोहित हो जाता है, उस मार्ग में चलते हैं। चलने से क्या होगा, कुछ कर्म करेगा, कुछ फल मिलेगा, स्वर्ग जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नर्क जाएगा, यही करता रहेगा, यही तो करते आ रहा है। अनादिकाल से क्या कर रहा है, यही कर रहा है। या मिमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अविपश्चित, विपश्चित है विद्वान, विपश्चित का बहुवचन बनेगा विपश्चित, न विपश्चित थी अविपश्चित बहुवचन अविपश्चित अविद्वान। अविद्वान लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पुष्पिता वाचम प्रबदंती, पुष्पिता वाच पेड़ में फूल लग गया, सुंदर दिखता ना, नहीं दूर से देखे बड़ा सुंदर दिखता है, कोई कोई फूल तो सुंदर होते हैं और सुगंध भी है, और कोई के दूर से तो बड़ा सुंदर दिखता है किंतु पास में जाए कोई सुगंध ही नहीं, निगंधा है वो किंसु का, पलासे के वृक्ष है, गर्मी के समय फूल होता है लाल लाल, पेड़ में फूल भर जाता है, सुगंध नहीं उसमें। ये पुष्पिताम पुष्प भरे जैसे बड़े सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है, ऐसे कर्म करो तो ऐसे फल मिल जाएगा, ये कर्म करो स्वर्ग जाना पड़ेगा, ये कर्म करो धन मिल जाएगा, तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे अविवेकी लोगों को कहते हैं। और कुछ लोग वेदवाद रहता है, वेद वाक्य में रहता हो करके कुछ अर्थवाद वाक्य है, ये कर्म करने से फल मिलता है, ये कर्म करने से फल मिलता है, याग करो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में कितने हजार वर्ष रहेगा, और स्वर्ग में कैसे सुख मालूम है, यन्न दुखे न संभिनम न चग्रस्तम अनंतरम अभिलाष उपनीतम च तत्सुखम सपदास्पदम, दुख बिल्कुल है ही नहीं, दुख दुख के न समझ न, और यहाँ सुख मिलता है तुरंत समाप्त हो जाता है, स्वर्ग में न चग्रस्त मनंतरम शीघ्र नष्ट होता नहीं है, सुख मिला दीर्घ काल रहेगा। और क्या है मालूम, अभिलाष उपनीतम च, आपकी इच्छा है कुछ, जैसे सामने कुछ चीज खाने का है, धन संपत्ति सब कुछ है, हमको चाहिए सामग्री, चाहिए सामग्री भी हो गया, बनाने वाला चला गया, अच्छा अपने बनाने में बनाते कभी थोड़े प्रमाद हो गया, जल गया, खराब हो गया, इसे कभी हो सकता ना, नहीं होता है, कुछ हो बनाना था अच्छा बनाना चाहते किन्तु बिगड़ गया, खराब हो गया, मिला खाने के लिए हुआ, धन है बनाने वाला चला गया, बनाने वाला हो ठीक, बनाने का तो बना दिया, कभी कुछ हो जाता है तो हुआ नहीं। हाँ स्वर्ग में अभिलाष उपनीतम, इच्छा करने मात्र से वस्तु सामने आ गया, कितना अच्छा है ये स्वर्ग सुख है। और दीर्घ काल तक, बहुत जल्दी नहीं, दीर्घ काल बहुत दिन तक, हजार हजार वर्ष, यहाँ तो थोड़े हजार क्या, सौ वर्ष में नहीं हो पाता है, पचास के बाद तो तैयार हो जाते हैं जाने का जाने का, कविता और पहले चलेगी, वहां हजार हजार वर्ष रहेगी, सुनने पर बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, ये स्वर्ग आप लोग को नहीं गए, ये बात नहीं, सब लोग स्वर्ग कितने हजार बार जा गए, जाकर के आए किन्तु अभी पता नहीं चलता है, कभी स्वर्ग में गया, कभी नरक में गएगा, कभी पेड़ पौधे बने, कभी कीड़े मकड़े बने, पूरा भटक भटक गया सब। ये स्वर्ग इस वेद बाधरता, वेद में स्वर्ग पुष्पादि फल कथन करके वो जो कहते ऐसे कहने वाले कर्मकांडी, वेद पढ़ने वाले कुछ अप्रामाणिक नहीं, प्रामाणिक है, ऐसे फल है, किन्तु वो फल कहने पर कुछ लोग सामान्य लौकिक कर्म करके तो प्रलोभित तो होने वाले बहुत ही, निषिद्ध कर्म करके धन कमाने वाले बहुत ही, ठगने के लिए चाहते वाले बहुत ही, उनकी तो गिनती ही नहीं है, जो ठगना चाहते हैं, निषिद्ध कर्म करना चाहते हैं, उनकी बात तो बिल्कुल नहीं। शास्त्रीय शास्त्र में भी जो कर्मकांड वेद में है, वस्तुतः तो कर्मकांड वेद में ये कर्म करो स्वर्ग को प्राप्त करो इसके लिए कर्म नहीं है, यजेत स्वर्ग काम, जो स्वर्ग चाहता है याग करे, सुख चाहते हैं तो ये कर्म करो, सुख सब लोग चाहते हैं, सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, यहां नहीं जाने करके साधना सब चाहते उसको सुख मिला, हमको इसे सुख मिलेगा। जो चोरी करता है वो देखता उनके पास इतने धन है तो सुख से रहते, मैं दुख से रहता हूँ, वो धन चोरी कर ले लेगा, सुख से रहेगा। सुख से रहने के लिए धन चोरी करता है ना, अपने धन संपत्ति इकट्ठे हो जाएगा और तो खाने पीने की जिसका अभाव है वो चोरी करता है, खाने पीने होने के बाद और थोड़ा धन बढ़ाने की चोरी करता है, और थोड़ा धन व्यवसाय करने वाले गलत काम करता है धन बढ़ाने के लिए। सुख के लिए सब चाहते कोई गलत नहीं, किन्तु सुख चाहने के लिए फिर क्या करना चाहिए मालूम नहीं, निषिद्ध कर्म करते हैं। निषिद्ध कर्म करने से पाप होगा, पाप होने पर नरक जाना पड़ेगा, इससे रुकने के लिए श्रुति कहती यजेत सर्ग काम, सुख चाहते तो याग करो, शास्त्रीय कर्म करो तुमको सुख मिलेगा। जो सुख चाहता है वो नहीं कहता तुम सुख की इच्छा करो और याग करो, ये नहीं वाक्य। जो सुख चाहता है निषिद्ध कर्म नहीं करो, शास्त्रीय मार्ग पर चलो, ये कर्म करो, ये कर्म करने से तुमको सुख मिलेगा। अशास्त्रीय मार्ग से हटा करके शास्त्रीय मार्ग चलाना ये मुख्य है। और किसके लिए जो चाहता है वो करे, कम से कम बाहर निषिद्ध कर्म छोड़कर मार्ग पर चले। उसके बाद जो मार्ग पर चलेगा विवेक होगा, समझेगा ये कर्म फल समाप्त हो जाएगा, कर्म करे स्वर्ग जाएगा, फिर स्वर्ग से वापस आना पड़ता है। जो लोग विवेक नहीं करते ये तो सोचते नहीं, स्वर्ग है जाना है आना है कहते, इसमें कुछ हम नहीं मानते, सुनते ही नहीं बहुत लोगों, क्या स्वर्ग किसने देखा है, ऐसे भी कहने वाले हुए बहुत, वो अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले कहते किसने देखा है, जोड़ा वो छोड़ो, पुरानी परंपरा हम नहीं मानते। नहीं मानने से क्या होगा, नरक जाना पड़ेगा पाप कर्म करने पर, नहीं मानेगा जो उसको लेंगे जमत तो लेंगे, जो नहीं मानता है मरेगा या नहीं मरेगा, मानो नहीं मानो मरेगा, और उस समय वो मनाएंगे, यहां जो नहीं मानता ना वहां मनाएंगे। यमदूत तो उसको लाठी लेकर लोहे की लाठी दो जाता पार देंगे तो वहां मानना पड़ेगा, यहां नहीं मानता है। छात्र भी तो कर्म जो करते हैं कम से कम निषिद्ध कर्म छोड़ करके इस मार्ग पर चले, इस मार्ग चलने पर विवेक होता है, फिर विवेक होने पर फिर ज्ञान मार्ग में जाने के लिए निष्काम कर्म करना सोचेगा। जब बहुत बहिर्मुख है तो कामना सकाम से भी जो कर्म नहीं करता है उसको क्या कहेंगे, निष्काम कर्म करो। जो कामना से भी कर्म नहीं करता है उसको निष्काम कर्म करने के लिए क्या कहेंगे, सकाम कर्म करेगा तो कुछ सत्कर्म किया, कुछ ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देता है, स्नान आदि करता है, नियम से कर्म करने के लिए कुछ नियम से चलना पड़ता है, ये इतने देर तक तो खाना है, इतने देर नहीं खाना, व्रत आदि करना, भूखा रहना, ये करने से सत्वगुण बढ़ता है। जो कुछ उपवास कोई सकाम से करता है तो भी, कोई सकाम से कुछ पाठ करता है पूजा करता है तो कुछ नियम पालन करता है ना, नहीं नियम पालन करता है, भोजन विश्राम में करता है, खाने में और भगवान का जप करे, कुछ करना ब्राह्मण को दक्षिणा दो प्रणाम करो, कुछ नियम करता है, ये करने से अंतगुण शुद्ध होता है। शुद्ध होने पर परमात्मा की कृपा से विवेक होता है, विवेक होने पर फिर विचार करता है कि ये सब कर्म करके मुझे स्वर्ग प्राप्त करना, फिर स्वर्ग से नीचे आना, इसकी अपेक्षा फिर परमात्मा की भक्ति थोड़ी होती है, फिर निष्काम कर्म करना चाहता है, परमात्मा की कृपा करते तो निष्काम कर्म करेगा। तो ये पहले पहले सुनने पर बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है, लोग उसी के पीछे चलते हैं। कोई एक आता है वेद में शेन याग, शेन है ना अभिचारण यजेत, यदि कोई अपने बहरी शत्रु को मारना चाहता है शेन याग करो तो शत्रु मर जाएगा, वेद में है, वेद में है तो किस लिए, शत्रु को मारना चाहे तो शेन याग करो शत्रु मर जाए, इसके लिए विधान करने के लिए। जब शत्रु को मारने के लिए जाता है चाकू लेकर के, कुठार लेकर के, खड़ग लेकर अभी मार दूंगा, क्रोध बहुत होने पर इसे मार देते लोगों, षड्यंत्र के मारते तुरंत नहीं तो बहुत षड्यंत्र करते, लाखों लाख खर्चे करके मरा देते हैं। उसके लिए थोड़ा शास्त्र जो मानता है उसको बताते, देखो तुम याग करो शत्रु अपने आप मर जाएगा, इसे इसे क्यों करना, क्यों मानना, मानने से पाप होता है, याग करो मर जाएगा। वो फिर याग करने शुरू करता है, याग करते करते कम से कम समय जो क्रोध था अभी तो रुक गया, फिर याग करने शुरू किया, याग करते करते बाद में बताएंगे याग करेंगे तो मर तो जाएगा शत्रु, हे याग करेंगे शत्रु मरेगा, किंतु शत्रु मरेगा तो इसको नरक जाना पड़ेगा, फिर से नरक जाना पड़ेगा तो फिर हम मारने से क्या लाभ हुआ। जब अंतगण थोड़ा शुद्ध होगा फिर कभी सैन्य आगे से निवृत्त हो गया। सैन्य आगे प्रारंभ करते समय भी उसको बताएंगे ऋतु के लोग ब्राह्मण लोग इसका फल है वो मर जाएगा किन्तु उसके लिए तुमको नरक जाना पड़ेगा। फिर कहीं ना कहीं निवृत्त हो गया, निवृत्ति कराने के लिए ये याग का विधान किया गया, न कि प्रवृत्ति करके मारने के लिए नहीं। तो ऐसे शास्त्र भी तो कर्म जो नहीं जानते किस लिए लोग जब बोलते हैं सुनने वाले को लगता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उसके चलते क्या कहते पुष्पिता महाचम प्रबंध जी अभिवेक लोग कहते ये कर्म करो ये फल मिल जाएगा। वेदवाद अर्थ वेद में जो अर्थवाद आदि सब है उसमें रमण करने वाले स्वर्ग पशु पुत्र धन आदि के लिए कहते नान्य दस्तीवादी न उससे बढ़कर कोई ही नहीं। स्वर्ग प्राप्ति का साधन धन प्राप्ति का साधन ये साधन फल से कर्म से दूसरा कोई है ही नहीं। वेद में तो यही है बताते हम बता देंगे ये साधन करिए फल मिलेगा ये साधन करिए फल मिलेगा ऐसे कहने वाले क्या है अभिवेकी है। जो विरुद्ध में चलने वाले तो उनकी बात छोड़ो शास्त्र मार्ग में चलने पर भी वेद में जो कर्म कांड है वस्तुतः तो कर्म करो स्वर्ग प्राप्त करो ये वेद भगवान का उद्देश्य नहीं है। जो चाहता है उसके लिए साधन बता दिया अन्य निषिद्ध कर्म नहीं करो शास्त्रीय कर्म करो अंत में निष्काम कर्म करके परमात्मा प्राप्त करना ये उद्देश्य है। वेदवाद अर्थ पात नान्य दस्तीवाद नहीं से बोलते हैं कहने वाले बड़े सुंदर अच्छा लगता है सुनने पर किंतु आगे उसके लिए कहेंगे श्लोक बोलो कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। कामात्मान काम उनका स्वभाव है काम इच्छा है फल चाहने वाले वो चाहते स्वर्ग मिल जाए पशु मिल जाए धन मिल जाए। पशु शब्द शास्त्र में आता है बार बार पहले पशु धन मानते थे अभी तो आपके पास कोई पशु रखने की जगह नहीं होगा कोई रखते नहीं पहले रखते थे घर घर में पालन करते गो सेवा करते गो सेवा का फल है दर्शन का फल है गो को प्रणाम करने का फल है। श्लोक इसमें छपाया था सदा गाव प्रणम्यास्तु मंत्रेण पार्थिव नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभ्यव नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च भूयो भूयो नमो नमः मंत्रस्य स्मरणादेव गोदान फलमाप्नुयात। सदा गाव प्रणम्यास्तु हमेशा गो को प्रणाम करना चाहिए माने इसी मंत्र के द्वारा मंत्र नाने न पार्थिव क्या मंत्र है नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभ्यैव नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च भूयो भूयो नमो नमः ये मंत्र है। नमो गोभ्य गो को नमस्कार है नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य श्रीमती है धन संपत्ति ऐश्वर्य वाले और सौरभ्यैव सौरभ्यै उनका नाम है सूर्यभा का आपत्य सौरभ्यैव नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च ब्रह्मा जी के पुत्री है गो भूयो भूयो नमो बार बार नमस्कार बार बार नमस्कार किसको नमस्कार गो माता के लिए उनका नाम बता दिया सौरभ्यै ब्रह्म सुता ये सब नमस्कार करे। आगे कहते ये मंत्र है ये मंत्र क्या है बोलो किसका दे नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभ्यैव एवच नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च भूयो भूयो नमो नमः। इसको बोलने के बाद आता है मंत्रस्य स्मरणादेव गोदान फलम आपुनियात, इस मंत्र के स्मरण से ही गोदान फल मिलता है। यहाँ का जो कार्यक्रम वाले पुत्र को क्या कहते उसको, यहाँ का जो कार्यक्रम छपाते है वार्षिक कार्यक्रम, वार्षिक कार्यक्रम पते उसमें छपा हुआ होगा, कितने पुस्तक में बता देना, पुस्तक में देखो मिल जाएगा। इसको देख करके श्लोक कंठस्थ हो जाना चाहिए मंत्र, इसी यहाँ के पुस्तक में छपाए, अतुल डॉक्टर छपवाया उनके नाम पर। ये गो सेवा करनी चाहिए, गो पालन करना चाहिए, आजकल नहीं हो पाता है। और पशुधन मानते थे, बहुत गाय गो रखते थे, कर्म करने के लिए घृत आदि दुग्ध आदि आवश्यक है, उसके बिना कर्म नहीं हो सकता, इसलिए पशुधन गो। विद्वान ब्राह्मण लोग कभी बहुत गो पालन करते थे, उनके पास ब्रह्मचर्य आदि रहेंगे, और हवन आदि करने के लिए शुद्ध गो घृत आदि चाहिए, और आगे कर्म वेद पाठ करते तो उनको घृत आवश्यक होता है, कंठ गलापा घृत पान करते खाने के लिए। तो जैसा भी हो, गो को पशु को धन मानते थे, इसलिए पशु पुत्र आदि आया। चित्रा यजित पशु काम, पशु चाहता है, पशु भी एक धन है, और किसके पास जिस प्रकार व्यवसाय में कभी कभी हानि लाभ है, पशु भी अच्छे बहुत कीमत से लाए, कभी गो बीमार हो गया, दूध नहीं दिया, नष्ट हो गया, हानि हो जाती, ऐसे उसमें भी हानि लाभ सब है। और किसके पास गो अच्छा हो गया, बहुत बढ़ने लगे, बहुत दूध देने वाले, सब प्रकार रहता है। तो अलग अलग फल देने वाले अलग अलग है, ऐसे कहने वाले कि यही वो सब कुछ है और कुछ है ही नहीं। ये क्या है, कामात्मना, काम है जिनका स्वभाव, स्वर्ग है सब कुछ है, स्वर्ग प्राप्त कर लिया तो हो गया सब, स्वर्ग ही प्रदान है, स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म ही कर्म का फल है, कर्म फल जन्म ही कर्म फल, कर्म करेंगे स्वर्ग जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, ये फल प्रदान। ये वाणी बोलते हैं क्रिया विशेष बहुलाम, जिसमें बहुत क्रिया कर्म हो, याग आदि किसके लिए, भोग ऐश्वर्य गति, भोग प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, भोग के लिए ऐश्वर्य ईश्वरत्व कुछ अधिक अपने में प्रभुत्व आदि प्राप्त करने के लिए ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं जो वेद में है कहते हैं, किंतु उसका तात्पर्य नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए है तो सब है ऐसा कहने वाले बहुत ही। वे ये जो पूर्व श्लोक में आया वेदवाद रहता नान्य स्थितिवाद ने कहो, तो उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म से मुख्य ऐसा नहीं मानने वाले भी बहुत है। मीमांसा लोग कहेंगे क्या ब्रह्म ज्ञान किसको होता है, मैं ब्रह्म हो नहीं सकता है, ब्रह्म के अलग है ही नहीं, नहीं मानने वाले भी बहुत है। शास्त्र में वास्तव शास्त्र का तात्पर्य तो है, किन्तु पूरा नहीं जान करके एक दृश्य को मानने वाले उसका निराकरण भी करते हैं। श्लोक बोलो, ये कर्म करने वाले कहने वाले बहुत ही है, शास्त्र का तात्पर्य निचोड़ समझ करके क्या करना चाहिए भगवान बताएंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्परियम शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेत् तद्वक्तारमावेत् आवेन्माम्।